ओम शांति। हम सभी सपूत बच्चे अपने जीवन से सबूत देने के लिए बाबा की श्रीमत पर सदा चलते रहते हैं। मर्जीवा जीवन जो बाबा ने हम सबको दी है, इसी जन्म में दूसरा जन्म हुआ है। लौकिक जीवन जो साधारण जीवन थी, बाबा ने अपना बना करके अलौकिक जीवन देकर मर्जीवा बनाया। मर्जीवा बच्चों से बाबा की बहुत सी उम्मीदें हैं। वैसे साकार बाबा की मुरलियों में आप सभी दो शब्द सुनते होंगे, बाबा कई बार कहते हैं, एक है मेरे सगे बच्चे, दूसरे हैं लगे बच्चे। एक है मातेले बच्चे, दूसरे हैं सौतेले बच्चे। हम कौन, तो इसी विषय को लेकर के आज सपूत बच्चों की क्या निशानियां होंगी, सपूत बाबा किसको कहता है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करें। क्योंकि बाबा कहता है मेरी नजर सपूत बच्चों पर ही जाती है। हैं दोनों प्रकार के, लेकिन बाबा तो अपने सपूत बच्चों को देखता है, उन्हें अपना राइट हैंड बनाता है, उनमें अपनी सब योग्यताएं और विशेषताएं भरता है। तो सपूत की परिभाषा क्या है, तीन बातों में मैं अगर कहूं, वैसे भी लौकिक जीवन में सपूत बच्चा उसको ही माना जाता जो माँ बाप का आज्ञाकारी होता है। तो हम सब जो बाबा की श्रीमत मुरली से मिल रही है, और मुरली के आधार से श्रीमत लेते हुए अगर हम श्रीमत प्रमाण कदम उठाते हैं, आज्ञाकारी बन करके जो कुछ बाबा ने आज्ञाएं दी हैं उसी अनुसार चलते हैं, तो हम सपूत बच्चों की लाइन में हैं। कई बाबा के बच्चे श्रीमत में भी अपने बुद्धि की मत, जिसको मनमत कहते हैं, या अन्य आत्माओं के प्रभाव की मत, जिसको परमत कहते हैं, बाबा तो ऐसे कहता है, लेकिन मेरे विचार से ये होना चाहिए। जब मेरा विचार कहीं पर भी ऐड होता है तो वो मनमत कहलाता है। इसलिए बाबा की श्रीमत के अनुसार कदम पर कदम उठाया जाए, सवेरे से रात तक, अमृत वेले आंख खुलते रात को सोने तक के लिए बाबा ने हर कर्म के लिए, हर कदम के लिए श्रीमत दी है। हम सब भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं श्रीमत के आधार से इस मर्जीवा जीवन में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन श्रीमत का हाथ अगर छूट जाता है तो माया कहीं न कहीं से धोखा देती है। इसलिए संपूर्ण रीति से श्रीमत को यथार्थ समझ करके उस पर चलना आज्ञाकारी बच्चे का कार्य है। तो आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, सभी समझते हैं कि हम बाबा की हर आज्ञा को, मूल आज्ञाएं तो हम सब जानते ही हैं। पहली आज्ञा, जब से ब्राह्मण जन्म मिला, पवित्र बनो, योगी बनो। इस आज्ञा पर चलने वाले सपूत बच्चे कदम कदम पर श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे बाबा की दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरा, बाबा हमेशा कहते हैं, सपूत मेरे बच्चे, सी फादर और फॉलो फादर। एक बाबा के को ही देखते, बाबा ने क्या किया, कैसे किया, साकार रूप में जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने किया है, भले यहां पर बैठे हुए बाबा के बच्चे कहेंगे कि हमने साकार को नहीं देखा, लेकिन साकार बाबा ने जो कुछ किया प्रैक्टिकल में, बाबा ने अपने अनुभव अपनी वाणियों में स्पष्ट सुनाए हैं। शायद आपने देखा हो, कुछ समय पहले एक बुक निकाली थी ब्रह्मा बाबा के लिए, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, और उसमें बाबा के 16 कदम, किस किस प्रकार से बाबा ने अपने जीवन में उठाए। अगर ब्राह्मण आत्माएं कदम पर कदम रखती हैं, तो बाबा कहते हैं कोई नया रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। नए रास्ते में क्वेश्चन उठते हैं, यथार्थ है या नहीं, करें या नहीं करें, लेकिन जो कुछ बाबा ने किया है, बाबा कहता सिर्फ बच्चे मुझे देखो और उस पर चलते चलो, फॉलो करो, कॉपी करने की छुट्टी मिली है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया है, हम सबको बाबा ने खुद ही सुनाया है, और हम सब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा कैसे निराकारी स्थिति में रहे, कैसे उन्होंने निर्विकारी जीवन बनाई, कितना सब कुछ करते हुए निरहंकारी स्थिति में रहे, कितनी सत्यता के साथ नम्रता का अवतार बन करके रहे। हम सब बाबा के जीवन चरित्र से परिचित हैं। तो सपूत बच्चे बाबा उनको कहता है, जो बाबा ने किया है वही करें, कदम पर कदम रखकर चलते चलें, तो वो कहलाते हैं सपूत बच्चे। बाबा ने अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ किस तरह से अर्पित किया, और अर्पित करने के बाद कभी भी उस पर अपना अधिकार नहीं रखा। तन को भी बाबा ने अमानत समझा, मन में भी कोई ऐसे संकल्प न चले, उस पर भी संपूर्ण ध्यान रखा, मन मना भाव होकर के रहे, और धन एक बार समर्पित कर दिया, फिर उसकी तरफ आंख भी नहीं उठाई। सब कुछ अर्पित करके, माताओं बहनों के हवाले करके खुद निश्चिंत हो गए। तो बाबा की बेफिक्र बादशाह की स्थिति, बेगमपुर की स्थिति आप सबने सुनी होगी। कितनी भी परीक्षाएं आई, हर प्रकार से पेपर आए, लेकिन बाबा हर पेपर में अचल रहे, अडोल रहे, एक रस रहे, एक बाबा दूसरा न कोई। ये सब बाबा के हर कर्म कदम के रूप में हम सबके सामने हैं, और सपूत बच्चे बाबा के उन्हीं कदमों पर कदम रख करके चलते हैं। तीसरा, बाबा कहते हैं जो मेरे सपूत बच्चे हैं वो सैंपल हैं। एक बार हम सभी मधुबन निवासी बाबा से मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि आप सभी शोकेस के 100 पीस हो। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं ऐसा समझती हो कि बाबा जो बताना चाहता है, जो दिखाना चाहता है, जो दुनिया बनाना चाहता है, उसके 100 पीस किस लिए रखे जाते हैं शोकेस में, जिसको देख करके लोग सौदा कर लें कि हाँ ऐसा ही होगा माल अंदर। तो हम सबको बाबा ने शोकेस के अंदर 100 पीस के रूप में रखा है, और 100 पीस जितने अच्छे होते हैं उतना ग्राहक उसके ऊपर आकर्षित होते हैं। बाबा ने हम शोपीस की एक बहुत बड़ी विशेषता बताई है और वो विशेषता है सिंपल रहो, सिंपल सिटी, रॉयल ब्यूटी। अब वो सिंपल सिटी क्या है? क्या ड्रेस की सिंपल सिटी ही सिंपल सिटी है, या बाबा हम बच्चों को किस रूप में सिंपल देखना चाहता है? थोड़ा सा इस पर गहराई से चिंतन करना, क्योंकि सिंपल अगर स्वच्छ भी हो तो सबको आकर्षित करती है। कोई स्थान सिंपल बनाया हुआ है लेकिन बहुत वहां स्वच्छता है, जैसे ये देख रहे हैं कोई भी इसमें भपका नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई भी फजूल खर्च नहीं है, लेकिन साफ स्वच्छ है तो सबको आकर्षित करता है। ऐसे ही बाबा हम सबको उसमें चार बातें विशेष सुनाता है सिंपल सिटी के अंदर। सिंपल वो है जिसके संकल्प में सिंपल सिटी है, माना संकल्पों में अधिक हलचल नहीं है, स्थिर हैं, एकाग्र हैं, कंट्रोल में हैं। अगर इस प्रकार के संकल्प हैं, चेक करना अभी अपने संकल्पों की क्वालिटी। एक ने अपने संकल्पों की स्पीड को चेक किया होगा, कईयों को बहुत कुछ सोचने की आदत होती है, एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं, व्यर्थ संकल्पों की बड़ी लंबी क्यों लग जाती है, स्टाफ ही नहीं लगता, और कई हैं जो बहुत जल्दी से अपने संकल्पों को रोक लेते हैं। ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, क्यों क्या कैसे कि उलझन में नहीं जाते। तो सिंपल आत्माएं पहले अपने संकल्प को बड़ा शीतल, सरल, क्वालिटी वाला, कंट्रोल वाला बना के रखती हैं। दूसरा, संबंधों में इतनी मधुरता, इतना मिलनसारता, समरसता, जो संबंध हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबको बंधनों से मुक्त किया है, संबंध से नहीं। हम सब संबंध, सेवा के संबंध में बंधे हुए हैं। बाबा भी अभी तक भी देह से भी डिटैच हो गया, अलग हो गया, लेकिन संबंध के कारण बच्चों से मिलने के लिए आता है। संबंध सुख देने का नाम है, सुख देना। तो हम सब के जो आपसी संबंध हैं, सुख देने और सुख लेने वाले हैं। जितना हम सब एक दूसरे के प्यारे हैं उतना ही न्यारे भी हैं। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस संबंधों में है, या कहीं पर अधिक झुकाव है, कहीं अधिक उलझे हुए हैं, किसी संबंध से बहुत प्यार है और किसी से किनारा करके चलते हैं। संबंधों की सिंपलिसिटी पर थोड़ा सा विचार करना, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने कहा तुम्हारे संगम पर संबंध ही है, मात पिता, भाई बहन, दादा शिव बाबा है, मात पिता हमारे साकार में ब्रह्मा बाबा जगदम्बा माँ है, और हम सब आपस में भाई बहन हैं। कितना सुंदर संबंधों का विस्तार है, अधिक नहीं है, बहुत सार है। तो ऐसे हम सब एक शेष संबंध में बंधे हुए और लौकिक संबंधों को निभाते हुए भी बाबा कहते जो लौकिक संबंध आप सबको मिले हैं ये सेवा के लिए हैं, सेवा करो और सेवा कराओ, सुख दो और सुख लो। तो सिंपल सिटी अपने संबंधों की भी चेक करना, सबूत देना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम बाबा के बच्चे बन गए तो सबको छोड़ करके किनारा कर लिया, सबके साथ रहते हुए, सबके साथ निभाते हुए, एक दूसरे को संबंधों के आधार से सहयोग देते हुए, पालना देते हुए, और फिर उसमें निर्मोही बन करके, निर्लिप्त बन करके रहना बाबा ने हम सबको सिखाया है। प्रवृत्ति में रहो लेकिन परवृत्ति रहे, फंसो नहीं, छोड़ो भी नहीं, तब चैलेंज कर सकोगे। सबूत तो ये देना है कि हम सब प्रवृत्ति में रहते भी, साथ में रहते भी पवित्र जीवन जी रहे हैं। ये है बाबा के बच्चों का सबूत देने वाले सपूत बच्चों का कार्य, उनको बाबा सपूत कहता है। छोड़ दिया, किनारा कर लिया, कोई संबंध ही नहीं रखा, तो सबूत तो नहीं दिया जा सकेगा, प्रमाण तो नहीं है। इसलिए बाबा ने हम सबको हमारे जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने रखा है, बच्चे इस प्रमाण के अनुसार चलो। फिर आती है व्यवहारिक जीवन, तीसरी बात है सिंपल सिटी में, संकल्प, संबंध और व्यवहार। आपस में कैसे व्यवहार से हम रहते हैं, किस प्रकार का व्यवहार चलता है, स्वार्थ भरा व्यवहार है या निस्वार्थ व्यवहार है, व्यवहार में कहां तक शुद्धता आई है। सुनी सुनाई बातें सुन करके मन भारी तो नहीं हो जाता, व्यवहार चेंज तो नहीं हो जाता, या इधर की सुन करके उधर सुना करके किसी के व्यवहार को बिगाड़ तो नहीं देते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इधर से उधर करने में बड़े होशियार होते हैं, होती छोटी सी बातें हैं लेकिन व्यवहार की अशुद्धता ये मानी जाती है कि अगर मुझे कोई बात पता है, किसी की बात किसी ने मुझे सुनाई और वो बात मैंने 10 के कानों तक पहुंचा दी, तो वो व्यवहार की अशुद्धता है, वो सिंपल सिटी नहीं है। सिंपल व्यवहार सबके साथ एक रस, निस्वार्थ स्नेह भरा समरस व्यवहार, जिसको बाबा कहता है बहुत सिंपल व्यक्ति है ये। और फिर रहन सहन कैसा है, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को बहुत कम खर्च बाला नसीन ये मंत्र पढ़ाया है। किसी भी प्रकार के अहंकार का आवरण न चढ़ा हुआ हो, दिखावा नहीं, सो नहीं, दूसरे के पास है तो मेरे पास भी हो, साधन हो, सुविधाएं हो, जो जिस प्रकार से वो खर्चे कर रहे हैं ऐसे हम भी करें, ये रहन सहन यथार्थ नहीं है। सिंपल रहन सहन बाबा ने सिखाया है, जिसके अंदर बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के, बच्चे ना अधिक ऊंचा ना बिल्कुल नीचा, बीच का जीवन जियो। जितना हो सकता है कार्य अच्छे से अच्छे हों और खर्चे कम से कम हों। खर्चे अधिक कर दिया और कार्य कुछ भी दिखाई न दे, बाबा इस बात को बहुत ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे बहुत कम खर्च में अच्छे से अच्छे कार्य करके दिखाओ। संकल्प भी कम खर्च करो, काम अच्छा हो जाए, बोल भी कम से कम हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो, स्पष्टीकरण अच्छा हो, धन भी कम से कम व्यय हो, खर्च हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो, ऐसी रहन सहन में सिंपल सिटी आ जाए, तो ऐसा सपूत बच्चे दे सकते हैं कि हम सब पारिवारिक जीवन में सब कुछ करते हुए, पैसा है तो ऐसे नहीं खाया पिया उड़ाया, उसको भी श्रेष्ठ कार्य की तरफ लगाना, बाबा की सेवा में सफल करना, ये रहन सहन के अंदर आ जाता है। तो हम सब इन चार प्रकार की सिंपल सिटी, सिंपल रह करके एग्जाम्पल बन करके बाबा को सपूत पने का सबूत दे सकते हैं कि बाबा हम आपके बहुत सपूत बच्चे हैं। तो एक आज्ञाकारी, दूसरा वफादारी। आप सभी जानते हो ये शब्द बड़े समीप के हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत गहरा अर्थ अलग अलग लिए हुए हैं। वफादारी कहा जाता है, जिस थाली में खाते हो उसमें ही छेद नहीं करो, माना जिसकी खाते हो उसकी बजाना भी सीखो। वफादार जो होते हैं पशुओं में भी जानवरों में भी, वो मालिक के रक्षा के लिए बंधे हुए रहते हैं, भले अपनी जान भी देना पड़े लेकिन मालिक को कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको कहते हैं वफादार। बाबा जब अपने बच्चों को वफादार टाइटल देता है तो पिताव्रता और पतिव्रता, कहीं पर भी किसी में भी आंख न जाए, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे सपूत बच्चे जो सबूत दे सकें कि इनका तो कोई संसार में नहीं है, व्यक्ति भी यही है वस्तु भी यही है, एक में ही सब कुछ है, तुम्हीं से खाऊं तुम्हीं से बैठूं तुम्हीं से सर्व संबंध निभाऊं, तुमको ही देखूं तुमसे ही प्यार रखूं, एक बाबा दूसरा न कोई, ये है सच्ची वफादारी। और उसके प्रति ही ये जीवन है, भले हम कहीं भी हैं कोई भी जवाबदारियां हैं, अगर बाबा ने हमें वो संभालने के लिए दी हैं, शरीर दिया है धन दिया है संबंध दिए हैं परिवार दिए हैं, तो ये बाबा की अमानत है, संभालने के लिए बाबा ने दिया है, इसमें मैंपन और मेरापन ना आ जाए, इतने वफादार रहें। अगर उसमें मैं और मेरापन आ गया माना अमानत में ख्यानत हो गई, ये बाबा का है और बाबा की सेवा के लिए है, ऐसे वफादार बच्चे बाबा को चाहिए, और उनको ही बाबा कहता है ये मेरा सपूत बच्चा है। ईमानदार इसके साथ शब्द आता है, आज्ञाकारी वफादार ईमानदार, और ईमानदारी वास्तव में प्रॉपर्टी के संबंध में आता है, ऑनेस्टी, जो कुछ बाबा ने दिया है धन संपत्ति जो कुछ है, एक भी पेनी एक भी पैसा व्यर्थ न जाए, सफल हो श्रेष्ठ कार्य की तरफ लगे, और जिस लिए बाबा ने दिया है उसके सिवाय और कहीं पर भी खर्च न हो जाए व्यर्थ न चला जाए, उसको और बढ़ाया जाए वो ऐसे ही न चला जाए। ईमानदार जो होते हैं वो बहुत सब कुछ संभाल करके चलते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी हेरा फेरी नहीं करते, इधर की उधर नहीं कर देते, छिपाते नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते, जो हूं जैसा हूं बाबा तेरा हूं। पहले अपने आप से ईमानदार चेक करना कि मैं आत्मा अपने आप से ईमानदार हूं, मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं है, जिस प्रकार से मेरा मनन है चिंतन है वर्णन है वो मेरी प्रैक्टिकल जीवन भी है, ईमानदारी ये है। अगर जीवन कुछ और है, वर्णन कुछ और है, मनन चिंतन कुछ और है, अंतर दिखाई देता है, बहुत अच्छे अच्छे वर्णन हम लोग कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में आचरण में वो बातें दिखाई नहीं देती, तो उसको ईमानदार नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा ने हम सबको जब सपूत बच्चे का टाइटल दिया है तो सपूत वही है जो आज्ञाकारी है, वफादार है, ईमानदार है, और एक और बड़ा अच्छा शब्द फरमानवरदार है। वैसे आज्ञा का एक उर्दू शब्द, लेकिन फरमान शब्द जो आता है वो बहुत कड़े शब्द में आता है, फरमान का उल्लंघन कभी भी न हो जाए। आप सबको एक हंसी की बात सुनाता हूँ। कई सालों तक जब वरदान शुरू हुए मुरली के अंदर तो सबको बहुत अच्छे लगे, बहुत जगह से मुझे फोन पत्र आए कि वरदान बाबा दे रहा है, ये बहुत अच्छा लगा। एक बार मुझे ऐसे ही, मैं दादी जी के साथ बैठा था, दादी को मैंने कहा दादी अभी वरदान बहुत समय चलाए मुरली में, अभी फरमान चलाते हैं। बोली अच्छा ट्रायल करके देखो। तो केवल दो मास मुरली के नीचे फरमान लिखे वरदान की जगह पर, और वो जब फरमान मुरली में पढ़ने लगे लोग तो इतने भयभीत हो गए, डरने लगे, फरमान भगवान का फरमान, और मैं तो बिल्कुल भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता है। तो उन्होंने बार बार फोन किए, पत्र लिखे, भाई फरमान शब्द मुरली में नहीं लिखो, फरमान बड़ा कड़ा शब्द है, अगर भगवान ने फरमान किया है, सतगुरु ने कोई फरमान किया है और मैं भूल गया, मैंने उसका पालन नहीं किया, तो मेरे पर बहुत दंड चढ़ जाएगा। इसलिए फरमान शब्द को उन्होंने स्वीकार ही नहीं कर पाया, चेंज करना पड़ा, फिर से वरदान लिखने पड़े। तो बाबा हम सबको फरमान कर रहा है संगम युग पर, क्या फरमान मिल रहा है इस समय, अंतिम समय की सूचना के अनुसार बाबा का फरमान है, बच्चे सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने दो, संकल्प को भी व्यर्थ नहीं जाने दो, संगम की घड़ियों को भी व्यर्थ नहीं जाने दो, बचाओ, ये बहुत काम में आने वाला है, व्यर्थ न जाए, ये फरमान के रूप में बाबा भी हम सबको कह रहा है। तो हम सब बाबा के फरमान वरदार बच्चे, फरमान को सिर माथे रख करके जो कुछ बाबा आपने कहा है मैं करके दिखाऊंगा, उसके लिए बहुत संकल्पों में दृढ़ता की जरूरत है। सिर्फ ऐसे ही साधारण संकल्प अगर होंगे तो फरमान पर चलना सहज नहीं है, कहीं न कहीं माया फरमान पर उल्लंघन करा देती, कुछ न कुछ फरमान भूल जाते हैं। तो बाबा के क्या फरमान है चेक करना, हमारी दृष्टि के लिए क्या फरमान है, वृत्ति के लिए क्या फरमान है, बोल के लिए क्या फरमान है, स्मृति के लिए क्या फरमान है, कर्म के लिए क्या फरमान है, सब प्रकार के फरमान, यदि फरमान के रूप में हम इस बात को लें कि बाबा ने दृष्टि के लिए फरमान किया है बच्चे केवल आत्मा को देखना, देह को नहीं देखना, देह को देखोगे तो ये विषैला सर्प है, डस लेगा, इसलिए आत्मा को देखने का अभ्यास करना, ये फरमान है बाबा का, और फरमान समझ करके हम इसको सहज रीति से पालन कर सकते हैं। तो दृष्टि की स्वच्छता, वृत्तियों की अनासक्ति, स्मृति में एक बाबा दूसरा न कोई, न पास्ट की स्मृतियां न फ्यूचर की, वर्तमान में जी रहे हैं तो हमारी श्रेष्ठ स्मृतियां, बोल भी बाबा हमेशा इसके लिए भी फरमान करते कि बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और जो आवश्यक है जितना जरूरी है उतना ही बोलो, अधिक नहीं बोलो, जो काम का है उतना बोलो, ये बहुत बड़ा फरमान बाबा का मिला है। ऐसे बाबा के जो फरमान वरदार बच्चे हैं वो हर फरमान को बहुत सहज रीति से अपना समझ करके, बाबा ने कहा है मुझे करना है, तो सपूत बच्चे इन चार विशेषताओं से संपन्न हो जाते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और फरमान वरदार। फिर उनकी निशानियां आप देखो, सबूत उनके जीवन का क्या है, प्रैक्टिकल अगर आप सवेरे से रात तक उनके जीवन देखेंगे, बाबा भी इस समय क्या कह रहे हैं, वाणी के द्वारा तो 75 साल हो गए बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अब तुम्हारी चलन और चेहरे से बाप प्रत्यक्ष होगा, बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन हमारा चेहरा और हमारी चलन, माना हमारी जीवन। अगर हम सदा बाबा के फरमान पर चलने वाले सपूत बच्चे हैं तो व्यवहारिक जीवन, चलन और चेहरे से जो दिखाई देगी निश्चिंतता होगी, बहुत बेगमपुर की वात्साही का अनुभव होगा, कोई भी प्रकार का गम नहीं, कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं, अगर प्रसन्न चित्त जीवन है, द्वंद रहित जीवन है, तो कहेंगे ये सबूत है कि इस कलयुग के अंदर इतनी समस्याओं के बीच में रहते हुए, इतने पेपर, इतनी विघ्न, इतनी बाधाएं, इतने स्वभाव, इतने संस्कार, जब माया का फुल साम्राज्य है, पांचों विकारों का फुल फोर्स है, पांचों तत्वों का भी अति की ओर सब जा रहे हैं, और ऐसे समय में इनको कौन सी शक्ति मिली है जो बिल्कुल बेफिक्र हैं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, किस चीज के बने हुए हैं। ऐसी जीवन अगर बन गई, अचल अडोल एक रस बेगमपुर की निश्चिंत जीवन, तो ये सबूत है कि बाबा ने अपने बच्चों को ऐसा बनाया है। कोई पेपर आ गया, वैसे बहुत भाग्य का चिंतन, बहुत अच्छा सुमिरन है, और थोड़ा सा भी कोई बात आ गई, उलझ गए, उदास हो गए, आंसू आ गए, घबरा गए, नींद फिट गई, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। लेकिन सबूत क्या है? बाबा हमें पढ़ा रहा है, भगवान की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, उसका सबूत है हम अपनी ऐसी जीवन बनाएं कि कुछ भी हो जाए अचल स्थिति रहे, स्थिति डगमग न हो। तो सभी बाबा को सबूत देना, सबूत देंगे, सपूत बच्चे ही दे सकते हैं कि इतने सारे कार्य होते भी 8 घंटा 10 घंटा, क्या कई बार 14-14 घंटा काम करने पड़ते, सेवाएं होती हैं, लेकिन करते हुए भी कितने हल्के हैं, कितने लाइट हैं, ये सबूत है। कोई भी प्रकार का मैंपन नहीं है, मेरापन नहीं है, मैं करता हूं, मेरी प्रशंसा हो, मेरा नाम हो, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, ये प्रैक्टिकल सबूत है। अगर किसी भी प्रकार का करने के बाद ये आ जाता है कि मेरा नाम तो होना चाहिए, बाबा कहता जो कुछ किया वो सब मिट गया, की कमाई खत्म हो गई, कराने वाला करा रहा है, इतना एक निरहंकारी स्टेज आ जाए। मैं तो कभी कभी चेक करता हूं, जब कोई महिमा करता ये करते ये करते, मैं क्या करता हूं, मैं क्या सीख के आया था, बाबा करा रहा है, बाबा के हाथ हैं, बाबा करा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। अगर जरा भी सूक्ष्म में भी मैंपन आ जाएगा तो उसमें मिक्स हो जाएगी भाषा। आपने नोट किया होगा वरदान स्लोगन जो भी लिखता हूं, इसमें ये ना ऐड हो जाए कि ये कोई मिक्स किसी की बात है। डायरेक्ट भगवान ने जो कहा है, उस भगवान के श्रीमत के बीच में, उसकी श्रेष्ठ शिक्षाओं के बीच में मेरे मन के विचार ऐड न हो जाएं, इतना ध्यान रहता है। इसलिए कभी भी वरदान स्लोगन कोई भी बात सुनते पढ़ते, अभ्यक्ति सारे पढ़ते, शायद आपने कभी नहीं नोट किया होगा ये किसी व्यक्ति के महावाक्य हैं, ये भगवानों वाच्य है। इसमें मैं अपना मैंपन मिक्स न कर दूं, एक भी शब्द, कभी भी किसी शब्द को अगर कोई मेरे से पूछे ये शब्द कभी बाबा ने बोला या आपने ऐड किया, कभी कभी मेरे से प्रश्न करते हैं, मैं कहता हूं मैं डेट बताता हूं, इस डेट को बाबा ने बोला है, और बाबा के शब्द ही वो यथार्थ रीति से, भले उनकी सेटिंग की है लेकिन उसका भाव अर्थ नहीं बदला है। बाबा ने भाव शब्द तो कभी यूज नहीं किया, बहुत कम शब्द यूज किए भाव के रूप में। वो पहली लाइन जो है वो सेट की गई है, वरदान का स्वरूप बनाया है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट रीति से भगवानों वाच्य ही है, उसमें कोई भी मत मिक्स नहीं है। तो हम सब बाबा के बच्चे जो कुछ कर रहे हैं, कर्तापन का अहम भी ना आए, बोझ भी ना हो, बहुत लाइट रहें, हल्के होकर के चलें, ये सबूत है। सबके स्नेही बन करके रहें, कोई मेरे कोई भी संगठन में मेरे से अपसेट न हो जाए, सबको सहयोग प्राप्त हो, सबको स्नेह मिले, एक सबूत है इस ईश्वरीय पढ़ाई का, परमात्म पालना का। जिनके भी संपर्क संबंध में हम आए, उन आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति हो, उनके दिल की दुआएं मुझे मिले, एक लक्ष्य रख करके ये सबूत देना है। कोई भी किसी भी कारण से अपसेट होकर के मुझे बद्दुआ न दे, हर आत्मा की दुआएं मिलती चलें। बाबा ने हम सबको ये विधियां सिखाई हैं, प्रैक्टिकल पुरुषार्थ है, यही लक्ष्य रख करके चलना कि ये मुझे सबूत देना है। ब्राह्मण परिवार में सबके साथ रहते हुए, मैं ऐसा सबूत दूं जो कोई भी आत्मा मेरे से डिस्टर्ब होकर के बद दुआएं न दे, ज्ञान की कहीं ग्लानी न हो, बाबा की ग्लानी न हो, कोई ये न कहे अरे ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, ये ब्रह्मा कुमार है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे रहता है, क्या पहनता है, इसका चलना देखो, इसका बोलना देखो, क्या दिखाई देता है। ये सबूत नहीं है, प्रैक्टिकल सपूत बच्चे का सबूत है उसकी साधारण सिंपल नेचुरल जीवन, स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन, हर समय चेहरे पर उलझन नहीं है, हल्का है, मुस्कराता है, प्रसन्न चित्त है, जो कुछ होता है नथिंग न्यू की स्मृति से सदा एक रस है, अचल है, ऐसा सबूत बाबा को चाहिए। सम्मान मांगने की कोई से जरूरत नहीं है, कई लोग सम्मान की जैसे आस रखते हैं, सम्मान मिलना चाहिए, और बाबा ने उसकी बहुत अच्छी विधि सुना दी है, बच्चे तुम दो अपने आप मिल जाएगा, रिटर्न मिलना ही है लेकिन दो पहले देना सीखो। हम सब ब्राह्मण परिवार के अंदर भी दाता नहीं है, सहयोग दे रहे हैं लेकिन दाता हम सारे विश्व के लिए हैं। हम दूसरों को बदलने की आस न रख करके स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन हमारा पहला स्लोगन है। अगर हम स्वपरिवर्तन कर रहे हैं, खुद को बदलने का लक्ष्य रखते हैं, दूसरे अपने आप बदलेंगे। ये बदल जाए तो मैं बदल जाऊं, ये कुछ झुके तो मैं कुछ मानूं, बाबा ने ये हमें सिखाया ही नहीं है। सबूत ये है कि मैं खुद बदल लूं अपने आप दूसरा बदल जाएगा। तो ऐसे सबूत दे करके अब संगम युग पर बाबा को सपूत देना है, सपूत बन करके सबूत देना है, एग्जाम्पल बनना है। एक एक बच्चे को अगर बाबा की पालना ली है, कहेंगे हमने तो बहुत कम पालना ली, कई बाबा के नए बच्चे आए हैं, अभी दादी हाथ उठवा रही थी तो बहुत से बच्चे नए नए थे सभा में, ऐसा नहीं सोचो कि बाबा की पालना अभी नहीं मिली, नहीं मिल रही है, लेकिन आप सभी बाबा की अमृत वेले से पालना ले रहे हो। आंख खुलती है, बाबा की दृष्टि, बाबा की सकास अपने बच्चों पर आती है, और बाबा अव्यक्त रूप से एक एक बच्चे को सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व खजानों से भरपूर करता है। हम सब बाबा की ऐसी पालना ले रहे हैं। एक एक बच्चे को देखना है अपने आप को, मैंने अपने आप को कितना भरपूर बनाया है। बनाना अपने को खुद पड़ेगा, दाता तो हमें सब कुछ दे रहा है। तो बाबा अपनी पालना दे रहा है, सकाश दे रहा है, शक्तियां दे रहा है, हम उसका चिंतन करें, सुमिरन करें, अपने स्वरूप में उतारें, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप बन करके सेवाओं का सबूत दें। जो सेवा हो सच्चे दिल की सेवा हो, रहम दिल भाव की सेवा हो, भले कोई ग्लानी करता, कोई नफरत करता, कोई विरोध करता, कुछ भी करे, लेकिन मैं बाबा का बच्चा सहनशीलता का अवतार बन करके सहन करने का सबूत दूं। ऐसे नहीं कब तक सहन करेंगे, कितना सहन करना पड़ेगा, बाबा कहता है इसकी कोई मापदंड नहीं है, माप तौल नहीं है, जब तक जीना है तब तक सहना है, जहां रहना है वहां सहना है। इसलिए सहन शक्ति से सबूत देना है। सब कुछ बाबा कहते बच्चे सुनना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये मर्जीवा जीवन है तुम्हारी, इस मर्जीवा जीवन में ये सब कुछ करके मुझे बाबा के ज्ञान का प्रत्यक्ष सबूत देना है कि भगवान मुझे मिला है, प्रत्यक्ष प्रमाण देना है। कहना नहीं है मुख से कि भगवान आ गया है, कहोगे तो लोग हंसी करेंगे। बाबा कहता बच्चे कहने से भगवान सिद्ध नहीं होने वाला है, भगवान आ गया है, भगवान मुझे मिल गया है, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, लेकिन सबूत की जरूरत है, और सबूत यही है कि हमारी जीवन ऐसी हो जो लोग कहें कि इनको भगवान पढ़ा रहा है, इनको कोई शक्ति चला रही है, इनके पीछे कोई है। हम सब बाबा के घर में देखते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं देख करके, इतना बड़ा आश्रम देख करके, इतने सब देख, सब कार्य व्यवहार को देख करके उनको लगता है कि सचमुच ऐसा कैसे सब चल रहा है, कौन चला रहा है, जरूर आपके पास है कुछ, लेकिन कौन है, कौन भी करा रहा है इसको पर्दे के पीछे है। जब हम सभी ब्राह्मण बच्चे बाबा के जितने बच्चे हैं ये दृढ़ संकल्प ले लेंगे कि बाबा ने जैसी जीवन मुझे बनाई है, जैसी बाबा की आस है, जो बाबा की चाहनाएं हैं, वो मैं अपने जीवन से दिखाऊंगा, चलने से, बोलने से। तो किसी भाई ने मेरे से पूछा था कि अंतिम सेवा साक्षात्कार मूर्त बनने की है, वो साक्षात्कार मूर्त बनने की विधि क्या है, मुझे क्या लक्ष्य रखना चाहिए, क्या अटेंशन रखना चाहिए जो मैं साक्षात्कार मूर्त बन जाऊं। हमने कहा कुछ ज्यादा विशेष सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल दो बातों का ध्यान दो। एक, जितना हो सके अपनी रूहानियत की शक्ति को बढ़ाओ। रूहानियत की शक्ति, ये शारीरिक शक्ति नहीं, जिस्मानी शक्ति नहीं, लेकिन एक मैं आत्मा हूं, मैं रूह हूं, और रूह को देखना, रूहानियत से व्यवहार करना, इस चेहरे पर भी वो रूहानियत झलकने लगे। अगर जितनी आत्मिक स्थिति रहेगी, इस देह से भान से न्यारी स्थिति रहेगी, उतना आप साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। और दूसरा, जितना हो सके उतना हर बात में पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी आने नहीं देना। होंगी बहुत सारी बातें नेगेटिव होंगी, दिखाई देंगी, हमारे साथ भी घट जाएंगी, लेकिन मुझे नेगेटिव बातों का चिंतन नहीं करना है, वर्णन नहीं करना है। आती हैं फलिष्ठा, मेरे काम की नहीं है। तो अगर आप सकारात्मक चिंतन करने की कला सीख जाएंगे तो शुद्ध संकल्पों से एक सुंदर लाइट का घेरा निर्माण होता है। आप सब देखना, जो आत्माएं बहुत शुद्ध संकल्पों में रहती हैं, जो बहुत हल्के लाइट संकल्पों में रहती हैं, कोई टेंशन लेकर के नहीं घूमती हैं, उनके चेहरे के चारों तरफ से एक कोरा बन जाता है, पवित्र विचारों का, शुद्ध विचारों का आभा मंडल बनता है। और जब ऐसे शुद्ध विचारों में आत्माएं रमण करती हैं तो नेचुरल है उनसे, उनकी दृष्टि से, उनकी मुस्कुराहट से, उनके हर चलन से लोगों को अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। कोई स्थूल में ऐसे देवी देवता नहीं दिखाई देने लगेंगे, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी रूहानियत की, प्योरिटी की लोगों को अच्छे अनुभव कराएगी। इसलिए बाबा कहता, साक्षात्कार कराने की बजाय साक्षात मूर्ति बन जाओ। तो हम सबको अभी अंतिम सेवा की तैयारी करनी है। बहुत फास्ट समय परिवर्तन हो रहा है और बाबा का इशारा है कि बच्चे अब अपनी साक्षात स्थिति ऐसी बना लो जो आपकी दृष्टि से लोगों को बाबा दिखाई दे, आपके व्यवहार से बाबा दिखाई दे। आप इतने अधिक अच्छे अच्छे संकल्प रचो, शुद्ध संकल्पों में रमण करना सीख जाओ। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध संकल्पों में रमण करते हुए एक बाबा की याद में रह करके, एक वृत्ता बन करके, एकाग्रता के अभ्यास से हम बाबा को बाबा की पालना का इस मर्जीवा जीवन में सच्चा सबूत दे सकते हैं। ओम शांति।